अमन और मान दोनों भाइयों को तारापरी पर शक हो गया था। उन्हें लग रहा था कि तारा उन लोगों से कुछ छिपा रही थी, इसीलिए दोनों भाइयों ने ये निश्चय किया था कि शादी से पहले वे तारा का जो भी सच है वो पता लगाएंगे। उन्हें ये लग रहा था कि वो दानव जिसने उनकी सगाई के दिन हमला किया था तारा को लेने के लिए वहां आया था, और तारा को कैसे पता चला कि उस दानव की मृत्यु तिलिस्मी पत्थर के द्वारा होगी, बस यही बात उनके दिमाग में शक पैदा कर रही थी। अमन और मान दोनों एक दूसरे को बताए बिना तारा का सच पता करने की फिराक में थे। सुमान ने अपनी पतला होने की जादुई शक्ति को जागृत करके तारापरी के कमरे के दरवाजे के नीचे से एकदम पापड़ सा बनकर प्रवेश कर लिया था। वहीं अमन भी इस बात का सच पता करने के लिए तारापरी के कमरे के पास पहुंच गया था जहां पर खिड़की थी। दोनों भाई अपने अपने सिरे से सच पता करना चाहते थे कि तारा वाकई कोई इंसान है या कोई चुड़ैल। जब से मलिका ने अमन को हवेली में घेरा था तब से अमन और भी ज्यादा सक्रिय हो गया था, क्योंकि अगर अमन कोई आम आदमी होता तो वो यूं तारापरी पर शक नहीं करता, लेकिन अमन एक पावरफुल आदमी जिन था जिस पर तिलिस्मी पत्थर की रक्षा की जिम्मेदारी थी, और उस तिलिस्मी पत्थर से उसके दादाजी, उसकी माँ, उसका भाई और उसकी भी जान जुड़ी हुई थी। अगर वो तिलिस्मी पत्थर काली शक्तियों के हाथ लग जाता तो उनकी जान आसानी से जा सकती थी और पूरी की पूरी सफ़ेद जिन्नों की प्रजाति हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती थी। सो इसीलिए अमन किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो जल्द से जल्द तारा का सच जानना चाहता था। हालांकि वो तारा से बेहद मोहब्बत करता था, पागलों की तरह उसे चाहता था, लेकिन इस वक्त जो अमन की पहचान थी वो उससे भी अपना मुंह नहीं मोड़ सकता था। तारा से उसका प्यार अपनी जगह था, लेकिन तिलिस्मी पत्थर की रक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा ये अलग बात थी। अमन के लिए जितनी तारापरी इम्पॉर्टेंट थी उतना ही उसके लिए उसका परिवार भी बेहद ज़रूरी था। बस एक बार तारा का सच उसे पता चल जाए उसके बाद उसकी सभी आशंकाएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती थीं। मान तारापरी के कमरे में पहुंच चुका था और उसने अपने सामने बिस्तर पर लेटी हुई तारा को देखा था जो आराम से चादर ओढ़कर सोई हुई थी। तारापरी सोई हुई बहुत प्यारी लग रही थी। मान ने उसे कुछ देर देखा और सोचने लगा, अगर ये लड़की कोई चुड़ैल हुई तो पक्का इसके बड़े बड़े दांत होंगे, बड़े बड़े नाखून होंगे। और मान ने सोचा, अगर ये वाकई कोई भूत या चुड़ैल होती तो क्या इतने आराम से सोती? और वो सोचने लगा, क्या चुड़ैल बनकर भी ये इतनी खूबसूरत लगेगी? वो अपने आप ही सवाल जवाब किए जा रहा था। खैर, वो सोचने लगा था कि ऐसा क्या किया जाए कि तारा जाग जाए और जागने के बाद अपना असली रूप दिखाए। तभी अमन, जो कि तारापरी के कमरे की खिड़की के सामने खड़ा हुआ था, वो भी यही सोच रहा था कि ऐसा क्या करे कि इस कमरे में चला जाए और देखे असल में ये मिस तारा क्या कर रही है। असल में दोनों भाई एक जैसे ही सोच रहे थे, लेकिन एक दूसरे को बताए बिना। अमन ज्यादा देर इस तरह से बाहर खड़ा हुआ तारापरी का कुछ करने का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने जिन रूप में आ गया था, और जिन रूप में आकर उसने तारापरी के कमरे की खिड़की का छोटा सा दरवाजा एक झटके से उखाड़ दिया था, और अमन अपना बिल्कुल छोटा शरीर करके उस खिड़की के रास्ते तारापरी के कमरे में चला गया था, और अंदर आकर उसने अपनी जादुई शक्ति के द्वारा उस कमरे की खिड़की को फिर से जोड़ दिया था। कमरे में जाते ही मान अमन को देखकर और अमन मान को देखकर चौंक गए, और फिर जल्दी ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे थे, क्योंकि वे दोनों समझ चुके थे कि वे दोनों बिल्कुल एक जैसा ही सोच रहे थे। आखिर उन दोनों के अंदर रूह तो एक ही थी। तब अमन ने धीरे से मान से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मान ने कहा, भाई आप यहाँ जो करने आए हैं मैं भी उसी लिए आया हूँ। तब अमन बोला, ठीक है, इस बारे में हम दोनों बाद में बात करेंगे, पहले ये सोचो कि आखिर कैसे तारा का सच पता करें। तब अमन बोला, एक तरीका है मेरे पास, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मान बोला, हाँ हाँ भाई बोलो। तब अमन ने मान के कान में अपना प्लान बताना शुरू कर दिया था, और अमन की बात सुनकर मान बोला था, ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर कुछ अनहोनी हुई तो पक्का आप मुझे बचा तो लोगे ना? तब अमन बोला, हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो, मेरे भाई हो तुम, तुझे कुछ थोड़ी ना होने दूंगा। तभी अमन ने अपना प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था, और अमन कुछ मंत्र पढ़ने लगा था। वहीं तारापरी तो आराम से बेसुध होकर सोई हुई थी। अमन और मान से सगाई के बाद वो कुछ ज्यादा ही सुकून महसूस कर रही थी। उसे लगने लगा था कि वो अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाएगी। अब बस उसे उस दिन का इंतजार था जब उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा और आकर अपनी माँ पर हुए जुल्मों का हिसाब लेगा। तभी अमन के मंत्र ने काम करना शुरू कर दिया था, और जैसे ही अमन ने मान पर मंत्र पढ़कर फूंका था, उसी पल मान एक सफ़ेद रंग के चितकबरे सांप में बदल चुका था। वो बहुत ही बड़ा और बेहद मोटा था। उसका फन कम से कम 10 फुट चौड़ा था। उसकी चौड़ाई से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो कितना बड़ा सांप बन चुका था। वो एकदम सफ़ेद था, लेकिन उसके ऊपर जगह जगह पर काले रंग के धब्बे थे जो उसे बेहद खूबसूरत बना रहे थे। तब अमन खिड़की के पास लगे पर्दे के पीछे छिप गया था। वो ऐसी जगह छिपा था जहां से वो तारापरी को आराम से देख सकता था। दरअसल अमन का ये प्लान था कि अगर तारा सच में इंसान है तो इस सांप को देखकर वो डर जाएगी और बुरी तरह से चिल्लाने लगेगी। लेकिन अगर तारा कोई इंसान ना होकर कोई काली या जादुई शक्ति वाली चुड़ैल है तो इस सांप को देखकर वो अपने बचाव के लिए उस पर हमला जरूर करेगी। बस यही सोचकर अमन ने मान को सांप बनने के लिए तैयार किया और खुद तारा परी के कमरे में छिप गया था। वो बस तारा का रिएक्शन देखना चाहता था कि इतने बड़े सांप को देखकर वो इंसानों की तरह से व्यवहार करेगी या फिर अपनी चुड़ैल या दानव के रूप में आकर उस पर हमला करेगी। वे दोनों बस यही देखना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर छिपकली यानी रज्जो ने अपने मालिक की पूरी बात सुन ली थी और वो अब अमन के बंगले में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने सारा प्लान तैयार कर लिया था कि वो उस बंगले में कब और कैसे प्रवेश करेगी। वहीं दूसरी ओर मलिका अमित का इंतजार कर रही थी कि कब अमित आए और वो उसकी खुशामद करके यहाँ से एक बार जैसे तैसे निकल जाए। अब मलिका ने अपना कड़ा इरादा कर लिया था और वो अभी अपनी प्लानिंग के बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी थी। मलिका समझ चुकी थी कि जरूर काली शक्तियों के मालिक अमित वहां आ रहे होंगे। मलिका अपनी आंखें बंद करके उस बिस्तर पर नग्न निढ़ान सी पड़ी रही थी। जिस हालत में अमित उसे छोड़कर गया था उसी हालत में वो पड़ी हुई थी। उसके पास उसकी सारी शक्तियां थी लेकिन वो इस बात का पता अपने मालिक अमित को नहीं लगने देना चाहती थी। तभी अमित उसके पास आया और उसे उसी हालत में देखकर मुस्कुराने लगा था। अमित उसकी लंबी कोरी कोरी टांगों के पास गया और वहां से उसे सूंघता हुआ उसके चेहरे तक जा पहुंचा और बोला, क्या हुआ मेरे दिल की मलिका, शक्तियां ना होने के कारण खुद को कुछ ज्यादा ही लाचार और बेबस समझ रही होगी ना, लेकिन क्या करूं, मेरा ये दिल आ गया है तेरे इस खूबसूरत जिस्म पर। मैं केवल तुम्हें इतना कहना चाहता हूं, जिस तरह से मैं तुमसे प्यार करता हूं तुम्हारे जिस्म को टूटकर चाहता हूं। बदले में अगर तुम भी मुझे उसी तरह से प्यार करो, उसी तरह से चाहो तो कितना मजा आएगा ना।
तब मलिका ने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन शक्तियां ना होने की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाई थी। तब अमित ने कहा, मुझे लगता है कुछ कहना चाहती हो तुम मुझसे, एक मिनट ठहरो जरा। ऐसा कहकर अमित ने कुछ मंत्र पढ़कर मलिका के ऊपर फूंकना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते मलिका के नग्न जिस्म पर से एक अजीबोगरीब रोशनी निकलना शुरू हो गई थी। अमित को इस बात का पता नहीं चल पाया था कि मलिका पहले ही अपनी शक्तियां वापस पा चुकी थी और अब अमित ने उसके अंदर जो शक्तियां गाली थी उनकी बदौलत वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी थी। जल्दी ही मलिका के अंदर से रंग बिरंगी रोशनी निकलना बंद हो गई थी। इसका मतलब साफ था कि अब मलिका के पास ढेरों पावरफुल शक्तियां एकत्रित हो गई थी। मलिका मन ही मन काफी खुश थी कि उसके पास अब ढेर सारी शक्तियां थी। मलिका को शक्ति देने के बाद अमित ने उसे कहा था, अब तुम बोल सकती हो, क्या कहना चाहती हो। तब मलिका ने उसे कहा, मालिक मैं जानती हूँ आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, ये मेरे लिए बड़ी ही खुशनसीबी की बात है, लेकिन मालिक मुझे इस तरह से बेजान रखकर भला आप कैसे सुख पा सकते हैं। मेरा जिस्म, मेरी जिंदगी सब आपकी देन है, आपको मुझे इस तरह से बेजान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको अपना लिया है, मैं काली शक्तियों के बादशाह की मलिका बनने जा रही हूँ, भला इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। अमित जैसे जैसे उसकी बात सुनता जा रहा था उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आती जा रही थी और वो बोलने लगा था, अच्छा तो जो कुछ भी तुम कह रही हो क्या वो वाकई सच है। तब मलिका बोली, हाँ मेरे मालिक बिल्कुल सच है। तब अमित बोला, लेकिन तू तो उस अमन को। अमित ने इतना ही कहा था कि तभी मलिका उसे बीच में रोकते हुए बोली थी, हाँ मालिक हाँ, मैं करती थी उस जिन्नामन से मोहब्बत, लेकिन वो धोखेबाज निकला। मैंने जब जब उसके करीब जाने की कोशिश की तब तब उसने मुझे बेइज्जत करके निकाला, जैसे उस दिन हवेली में उसने मेरा गला पकड़कर मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन आपके दिए हुए मंत्र ने मुझे बचा लिया था। ऐसा कहकर वो उसे चूमने लगी थी।